एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो भारतीय दर्शन की विशाल और कभी कभी थोड़ी जटिल लगने वाली दुनिया को समझने में, मैं कहूंगा, एक अद्भुत मार्गदर्शक का काम करती है।
हाँ, एम हिरण्णा की द एसेंशियल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी।
बिल्कुल वही।
और ये सिर्फ कोई पुरानी अकेडमिक दिलचस्पी की बात नहीं है, है ना? मेरा मतलब है आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है।
हाँ।
जब इतने सारे लोग जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं, या शायद बस थोड़ी भीतरी शांति, या चीजों को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश में हैं, तो ये हजारों साल पुराने विचार अचानक बहुत काम के लगते हैं।
सही कहा, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ये प्राचीन विचारक भी उन्हीं बड़े सवालों से जूझ रहे थे जिनसे हम आज जूझ रहे हैं। दुख क्यों है? इससे कैसे निपटा जाए? जीवन का असली मकसद क्या है? हिरण्णा की ये किताब इन सवालों पर भारतीय चिंतन की एक साफ तस्वीर देती है, और ये भी दिखाती है कि ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है बल्कि जीने के तरीके भी हो सकते हैं।
तो चलिए सफर को शुरू करने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लें। एम हिरण्णा यानी मैसूर हिरण्णा कौन थे?
देखिए, एम हिरण्णा 1871-1950 20वीं सदी के भारत के सबसे ज्यादा सम्मानित विद्वानों में से एक थे, खासकर संस्कृत और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में।
अच्छा।
वो मैसूर के महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात ये थी, मतलब जो उन्हें अलग बनाती थी, वो था उनमें पारंपरिक भारतीय पंडितों वाली गहराई और साथ ही पश्चिमी अकादमिक जगत वाली विश्लेषण क्षमता। इन दोनों का एक गजब का मेल था।
अच्छा, तो मतलब वो दोनों दुनियाओं को बखूबी समझते थे, पारंपरिक गुरुकुल वाली शिक्षा भी और जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई होती है वो भी।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने पारंपरिक गुरुओं से भी सीखा था और पश्चिमी फिलॉसफी के जो मेथड्स हैं उनसे भी वो अच्छी तरह वाकिफ थे, और सबसे बड़ी बात, उनकी संस्कृत पर पकड़, वो असाधारण थी।
अच्छा।
तो वो सीधे मूल ग्रंथों को पढ़कर अपनी समझ बनाते थे, किसी अनुवाद के जरिए नहीं। इससे उनके विश्लेषण में एक मौलिकता और गहराई आती है जो बहुत दुर्लभ है,
और शायद इसीलिए उनकी लिखाई इतनी साफ और व्यवस्थित मानी जाती है। मैंने सुना है वो मुश्किल से मुश्किल विचारों को भी बहुत स्पष्टता से पेश कर देते थे।
बिल्कुल। और वो दर्शन को सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं मानते थे, उनके लिए ये जीवन जीने का एक नजरिया था, एक व्यू ऑफ लाइफ, जिसका लक्ष्य आत्मज्ञान या कह लें आध्यात्मिक मुक्ति हो।
यही बात शायद उनकी इस किताब द एसेंशियल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ अलग अलग दर्शनों का एक ब्यौरा भर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन दर्शनों की आत्मा को, उनके एसेंस को पकड़ने की कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि इन सब अलग अलग धाराओं के मूल में क्या है।
तो ये किताब असल में करती क्या है, इसका मकसद क्या है?
देखिए, भारतीय दर्शन में कई सारे स्कूल या मत हैं, सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन, चार्वाक, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा।
हाँ, नाम ही कई बार कंफ्यूजिंग लगते हैं।
सही बात है। तो हिरण्णा की किताब इन सब का एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक नक्शा पेश करती है। वो इन सभी प्रमुख मतों का परिचय देती है, लेकिन एक खास नजरिए से।
और वो नजरिया क्या है? क्या है जो इन सबको जोड़ता है?
हिरण्णा का मुख्य तर्क जो पूरी किताब में चलता है वो ये है कि ये सारे दर्शन, चाहे वो ईश्वर को मानते हों या ना मानते हों, चाहे उनके सिद्धांत कितने भी अलग क्यों न लगें, वो सब एक बुनियादी मानवीय समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, और वो है दुख, जिसे दुखा कहा गया है।
दुख, हाँ।
और उनका साझा लक्ष्य है इस दुख से पूरी तरह मुक्ति पाना, जिसे मोक्षा कहते हैं। तो उनके हिसाब से भारतीय दर्शन मूल रूप से सिर्फ ये जानने की कोशिश नहीं है कि दुनिया कैसे बनी या ज्ञान कैसे मिलता है।
अच्छा।
बल्कि एक व्यवहारिक विज्ञान है, एक प्रैक्टिकल गाइड है कि दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसे मुक्ति का शास्त्र या सोटेरियोलॉजी कहना शायद ज्यादा सही होगा।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है, यानी फोकस थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर है। तो किताब कैसे आगे बढ़ती है? क्या ये सारे दर्शनों को एक एक करके समझाती है?
हाँ बिल्कुल। ये वैदिक काल की जड़ों से शुरू होती है, उपनिषदों की बात करती है, जहां से ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा यानी व्यक्तिगत चेतना जैसे केंद्रीय विचार निकले।
फिर ये उन दर्शनों पर आती है जो वेदों को आखिरी प्रमाण नहीं मानते, जिन्हें नास्तिक कहा जाता है, जैसे चार्वाक, जैन और बौद्ध धर्म।
अच्छा।
और फिर उन दर्शनों पर जो वेदों को मानते हैं, यानी आस्तिक दर्शन जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत।
तो चलिए कुछ मुख्य विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आपने नास्तिक मतों का जिक्र किया, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बुद्ध के चार आर्य सत्य तो काफी मशहूर हैं।
हाँ,
और वो सीधे दुख की समस्या पर चोट करते हैं, है ना? पहला, जीवन में दुख है, ये मानना होगा। दूसरा, इस दुख का कारण है जो कि हमारी तृष्णा या गहरी इच्छाएं हैं। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इसका निरोध संभव है।
और चौथा,
इसे खत्म करने का एक रास्ता है जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। इसमें सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, ऐसे आठ अंग हैं।
बौद्ध धर्म के कुछ और सिद्धांत भी तो बहुत मौलिक लगते हैं, जैसे अनाथमन, कि कोई स्थाई मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है।
हाँ, ये बड़ा क्रांतिकारी विचार है।
और अनित्य, यानी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये विचार हमारे मैं और चीजों से हमारे अटैचमेंट पर सीधा सवाल उठाते हैं, है ना?
बिल्कुल, ये हमें चीजों को जैसी हैं वैसी देखने में मदद करते हैं। और फिर जैन धर्म है जो अहिंसा पर अत्यधिक जोर देता है, मन, वचन, कर्म, किसी भी तरह से किसी को कष्ट न पहुंचाना।
उनका अनेकांतवाद का सिद्धांत भी मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, कि सत्य के कई पहलू होते हैं।
हाँ, और हमें दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये आज के पोलराइजेशन के दौर में कितनी जरूरी सीख है।
सही कहा। और फिर एक बिल्कुल अलग छोर पर चार्वाक दर्शन भी हैं। वो तो पूरी तरह भौतिकवादी हैं।
हाँ, चार्वाक या लोकायत, वो सिर्फ उसी को सच मानते हैं जो हम अपनी इंद्रियों से देख या महसूस कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब कुछ है।
आत्मा, ईश्वर, कर्मफल, पुनर्जन्म, इन सबको नकारते हैं।
बिल्कुल, उनका कहना है कि जीवन का लक्ष्य इसी दुनिया में इसी शरीर से सुख भोगना है, उधार लेकर भी घी पियो।
ये दिखाता है कि भारत में सोच की कितनी ज्यादा विविधता रही है। पर हिरण्या फिर आस्तिक दर्शनों की ओर मुड़ते हैं जो वेदों को मानते हैं। इनमें सांख्यों और योग को वो अक्सर साथ में समझाते हैं।
हाँ, क्योंकि उनमें गहरा संबंध है। सांख्य एक तरह से थियोरी देता है और योग उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है।
द्वैतवादी मतलब
वो दुनिया को दो मूल तत्वों से बना मानता है। एक है पुरुष, जो कि शुद्ध चेतना है, निष्क्रिय दृष्टा है, और दूसरी है प्रकृति, जो कि जड़ पदार्थ है, सक्रिय है, बदलती रहती है।
अच्छा।
दुख तब होता है जब पुरुष गलती से, अज्ञान के कारण, खुद को प्रकृति और उसके बदलावों से, जैसे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति के ही विकार हैं, उनसे आइडेंटिफाई कर लेता है, अपनी असली पहचान भूल जाता है।
और योग, पतंजलि का योग सूत्र?
हाँ, योग जिसे पतंजलि ने व्यवस्थित किया, वो इसी सांख्य के ज्ञान को अनुभव करने का, पुरुष को प्रकृति के इस भ्रम से निकालने का व्यवहारिक रास्ता है। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है, जैसा आजकल समझा जाता है।
हाँ, वो तो है।
पतंजलि का मशहूर सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग मन की चंचल वृत्तियों, जो विचार और भावनाएं उड़ती रहती हैं, उनको शांत करने की, उनका निरोध करने की प्रक्रिया है। इसका जो अष्टांग योग मार्ग है, जिसमें यम नियम जैसे नैतिक अनुशासन से लेकर आसन, प्राणायाम और फिर ध्यान समाधि तक शामिल है, वो इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है, जिसे कैवल्य कहते हैं।
कैवल्य मतलब
पुरुष का प्रकृति से पूरी तरह अलगाव, अपने शुद्ध केवल स्वरूप में स्थित हो जाना, मुक्ति।
तो सांख्य ने बताया कि प्रॉब्लम क्या है और योग ने बताया कि उसका समाधान कैसे करना है। बहुत खूब। इसी तरह न्याय और वैशेषिक दर्शन तर्क और दुनिया की चीजों को कैटेगराइज करने पर जोर देते हैं, ताकि सही ज्ञान से मुक्ति मिले।
हाँ, वो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा पर ज्यादा फोकस करते हैं, और मीमांसा दर्शन वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर जोर देता है। और फिर आता है वेदांत, जो शायद भारतीय दर्शन का सबसे प्रभावशाली स्कूल रहा है।
वेदांत यानी वेदों का अंत या सार, जो उपनिषदों पर आधारित है। इसकी तीन मुख्य शाखाएं बहुत प्रसिद्ध है ना? शंकर का अद्वैत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और मध्व का द्वैत।
हाँ, और ये तीनों ब्रह्म यानी परम सत्य, आत्मा, जीवात्मा और जगत, दुनिया के रिश्ते को अलग अलग तरह से देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है।
जैसे शंकर का अद्वैत वेदांत, वो तो कहता है कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है।
बिल्कुल, अद्वैत मतलब दो नहीं, एकमात्र सत्य ब्रह्म है। ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये एक तरह का भ्रम है, माया है, और हमारी जो आत्मा है वो असल में ब्रह्म ही है। हम अज्ञान के कारण ये भेद देखते हैं।
तो मुक्ति कैसे मिलती है?
ज्ञान से, जब ये ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या तत्त्वम असि, तुम वही हो, तब मुक्ति मिलती है। ये ज्ञान का मार्ग है।
लेकिन रामानुज का विशिष्टाद्वैत इससे अलग है।
हाँ, विशिष्टाद्वैत यानी क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। वो कहते हैं कि ब्रह्म, जिसे वो ईश्वर मानते हैं, सत्य है, पर आत्माएं और जगत भी सत्य हैं। वो ईश्वर के अंग या गुण की तरह हैं, उससे अलग भी हैं और जुड़े हुए भी। यहाँ मुक्ति का रास्ता मुख्य रूप से ईश्वर की भक्ति है, शरणागति है।
अच्छा, तो यहाँ भक्ति मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण है।
हाँ, और मध्व का द्वैत वेदांत तो ईश्वर, आत्मा और जगत को हमेशा से अलग और हमेशा अलग रहने वाला मानता है। द्वैत मतलब दो। यहाँ भी मुक्ति का मुख्य मार्ग भक्ति ही है, ईश्वर की कृपा है।
ये तो कमाल है कि एक ही स्रोत यानी उपनिषद से इतनी अलग अलग व्याख्याएं निकली। हिरण्या शायद यही दिखाते हैं कि अलग अलग इंसानों के लिए सच्चाई तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, यही हिरण्या का एक मुख्य बिंदु है कि इतनी विविधता के बावजूद इन सभी के केंद्र में वही लक्ष्य है, दुख से मुक्ति और परम सत्य का अनुभव। ये भारतीय दर्शन की एक बड़ी ताकत है, उसकी उदारता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश या कहें कि थीम्स निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? मेरे दिमाग में जो पहली बात आ रही है वो यही है, उद्देश्य की एकता। इतने सारे मतभेद दिखते हैं पर सबका निशाना एक ही है, दुख से छुटकारा और मोक्ष।
बिल्कुल सही, पहली थीम यही है। दूसरा, सिद्धांत और अभ्यास का संगम। ये दर्शन सिर्फ सोचने या बहस करने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। ज्ञान के साथ साथ साधना यानी प्रैक्टिकल अनुशासन जरूरी माना गया है।
हाँ, ये बात आज भी उतनी ही सच लगती है, चाहे हम योग करें, ध्यान करें या बस अपने विचारों पर थोड़ा गौर करें।
सही कहा। तीसरा, जो बार बार सामने आता है, अज्ञान ही दुख का मूल है। हमारी तकलीफों की जड़ बाहरी चीजों में उतनी नहीं है जितनी अपने असली स्वरूप और दुनिया की हकीकत को न समझने में है। वो मैं और मेरा का जो भ्रम है,
या चीजों के बदलने वाले स्वभाव को स्वीकार न कर पाना।
बिल्कुल। चौथा, अनुभव का महत्व। तर्क जरूरी है, लेकिन आखिरी सच्चाई सिर्फ किताबों या बातों से नहीं जानी जा सकती, उसे खुद अनुभव करना होता है। इसीलिए ध्यान, साधना, आत्मनिरीक्षण पर इतना जोर है, ज्ञान को जीना पड़ता है।
और पांचवा, नैतिकता का व्यवहारिक आधार। धर्म, अहिंसा, सत्य जैसे नैतिक सिद्धांत सिर्फ अच्छे नियम नहीं है, इन्हें इसलिए जरूरी माना गया क्योंकि ये मन को शांत और शुद्ध करने के तरीके हैं, ताकि हम सच्चाई को बेहतर देख सकें। ये मुक्ति के रास्ते की तैयारी जैसे हैं।
हिरण्या की किताब से कुछ विचार ऐसे उभरते हैं जो इन सब बातों का निचोड़ हैं। जैसे ये विचार के भारतीय दर्शन का लक्ष्य सिर्फ दिमाग की जिज्ञासा शांत करना नहीं, बल्कि साधक के जीने के तरीके को बदलना है। ये कितना प्रैक्टिकल लगता है ना।
हाँ बिल्कुल, और ये भी कि सच्चाई को सिर्फ बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उसे अपने पूरे वजूद से महसूस करना होता है। ये अनुभव वाली बात पर फिर से जोर देता है, सिर्फ जानना काफी नहीं, अनुभव करना जरूरी है।
एक और बात जो इन अलग अलग मतों को देखकर समझ आती है और जिसे हिरण्या हाईलाइट करते हैं, दर्शनों की ये विविधता कोई कमजोरी या भ्रम नहीं, बल्कि इस बात की समझ है कि अलग अलग स्वभाव के लोगों को एक ही मंजिल तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्तों की जरूरत पड़ सकती है।
ये हमें दूसरों के रास्ते का सम्मान करना सिखाता है, टॉलरेंस।
बिल्कुल।
और शायद सबसे दमदार बात आज के संदर्भ में, दुख सिर्फ समझने की चीज नहीं बल्कि एक समस्या है जिसे सुलझाने के लिए व्यवस्थित तरीके और अभ्यास की जरूरत है। यानी ये दर्शन एक तरह के थेरेपी या समाधान का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। और हाँ, वो प्रसिद्ध महावाक्य, खासकर अद्वैत वेदांत से जिसका जिक्र हमने किया, तत्त्वमसि, तुम वही हो।
बिल्कुल।
ये घोषणा कि हमारी अंतरतम चेतना आत्मा और ब्रह्मांड की परम चेतना ब्रह्म मूल रूप से एक ही है, इस एकता का ज्ञान, इसका अनुभव ही परम मुक्ति है। ये भारतीय विचार की शायद सबसे ऊंची उड़ानों में से एक है।
तो अब असली सवाल पर आते हैं, ये सब हजारों साल पुरानी बातें आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं? क्या इनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है आजकल की दुनिया में?
अरे बिल्कुल है, और शायद पहले से ज्यादा है। सोचिए, योग और बौद्ध धर्म की ध्यान, मेडिटेशन और सजगता, माइंडफुलनेस की तकनीकें।
हाँ, वो तो आजकल बहुत पॉपुलर है। आज पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट जगत से लेकर स्कूलों तक लोग इन्हें अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तनाव कम करने, फोकस बढ़ाने और मन को शांत रखने में वाकई मदद करती हैं। ये अपने विचारों और भावनाओं को बिना उलझे देखना सिखाती हैं। ये तो सीधा हिरियाना की किताब के सिद्धांतों का एप्लीकेशन है।
हाँ, ये बात तो है। और वो सांख्य और वेदांत वाली विवेक की बात, मतलब अपनी असली चेतना और अपने बदलते हुए विचारों, मूड्स, भावनाओं के बीच फर्क करना सीखना।
हाँ, डिस्क्रिमिनेशन।
जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं सिर्फ मेरा गुस्सा या मेरी चिंता या मेरी खुशी नहीं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो इन सबको देख रहा है, जो ज्यादा गहरा और स्थिर है, तो हमें एक तरह की भावनात्मक स्थिरता मिलती है। हम छोटी छोटी बातों से उतने परेशान नहीं होते।
बहुत सही कहा। और जैन धर्म का अनेकांतवाद याद है? सत्य के कई पहलू होते हैं।
हाँ,
अगर हम ये बात सच में याद रखें तो दूसरों की बातों को सुनने और समझने में ज्यादा खुले हो सकते हैं। इससे बहस और झगड़े कम हो सकते हैं, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो या समाज में। यह हमें थोड़ी विनम्रता सिखाता है कि शायद मेरा ही नजरिया पूरा सच न हो।
और नैतिकता वाली बात, धर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन और अहिंसा, ये हमें सिर्फ नियम नहीं देते, बल्कि ये याद दिलाते हैं कि हमारे हर काम का, हर शब्द का असर पड़ता है दूसरों पर भी और खुद हम पर भी।
हाँ, क्या हम अपने फैसलों में, अपने रिश्तों में, अपने काम में इन मूल्यों को ध्यान में रख रहे हैं? ये सवाल हमें ज्यादा जिम्मेदार और शायद ज्यादा मानवीय बना सकता है।
तो ये प्राचीन दर्शन सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं है, ये हमें आज भी बेहतर जीने, ज्यादा शांत रहने और शायद जीवन को ज्यादा गहरे अर्थों में समझने में मदद कर सकते हैं।
हाँ, ये हमें सिर्फ बाहरी सफलता, पैसा, शोहरत के पीछे भागने के बजाय भीतरी संतुष्टि और स्वतंत्रता, मोक्ष की ओर देखने का एक नजरिया देते हैं।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि दर्शन, फिलॉसफी कोई सूखी, उबाऊ या सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिए बनी चीज नहीं है। ये असल में जीवन को बदलने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है, एक टूलकिट हो सकता है। हिरियन्ना ने जिस तरह से इन जटिल विचारों को उनकी व्यवहारिकता के साथ पेश किया है, वो दिखाता है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितने प्रासंगिक हो सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि यह ज्ञान कितना टिकाऊ है, कितना एंड्योरिंग है। हजारों साल गुजर गए, दुनिया कितनी बदल गई, लेकिन इंसान की जो बुनियादी खोजें हैं, अर्थ की तलाश, शांति की इच्छा, रिश्तों को समझना, वो आज भी वही है।
सही बात है।
और भारतीय दर्शन इसके लिए समय की कसौटी पर खरे उतरे समाधान और दृष्टिकोण पेश करता है। हिरियन्ना की किताब इन अलग अलग रास्तों को एक साथ लाकर हमें एक बड़ी मुकम्मल तस्वीर देखने में मदद करती है।
हाँ, और ये हमें कहीं ना कहीं ये भी याद दिलाता है कि असली आजादी, सच्ची स्वतंत्रता शायद बाहरी हालात बदलने से उतनी नहीं मिलती जितनी अपने अंदरूनी नजरिए को, अपने मन को समझने और बदलने से मिलती है।
हिरियन्ना का काम हमें इसी अंदरूनी यात्रा के लिए एक नक्शा सा देता है।
पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। हिरियन्ना ने हमें इन दर्शनों का एक एकीकृत दृष्टिकोण दिया जो दुख से मुक्ति पर केंद्रित है, लेकिन क्या आज की सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में, जहां समस्याएं और भटकाव शायद पहले से भी ज्यादा जटिल है, क्या ये प्राचीन नक्शे वाकई हमें रास्ता दिखा सकते हैं, या ये बस इतिहास के सुंदर अध्याय बनकर रह जाएंगे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।
बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।